एकत्र ज्ञान गोष्ठी आज की जरूरी विचारों का सार अब अपनी भाषा में। ये ऑडियो सारांश एकत्र एआई की मदद से तैयार किया गया है। ज्ञान गोष्ठी में आपका स्वागत है।
नमस्कार। आज हम एक ऐसे विषय में थोड़ी गहराई से बात करने वाले हैं जो आजकल बहुत सुनने में आता है पर शायद ठीक से समझा नहीं जाता। अतिवाद मतलब एक्सट्रीमिज्म।
हाँ बिल्कुल।
और इसे समझने के लिए हम जेएम बर्जर की किताब एक्सट्रीमिज्म का सहारा लेंगे।
बिल्कुल सही कहा। देखिए, आजकल आप कहीं भी देखें, खबरें हो, सोशल मीडिया हो, आसपास की बातचीत हो, ऐसा लगता है जैसे दुनिया थोड़ी बटसी रही है ना?
हाँ, ध्रुवीकरण बहुत बढ़ गया है।
वही, लोग एक दूसरे के खिलाफ ज्यादा नजर आते हैं। तो बर्जर की ये किताब हमें एक तरह का ढांचा देती है, एक नजरिया जिससे हम समझ सके कि आखिर ये अतिवाद है क्या चीज, ये काम कैसे करता है, चाहे वो किसी भी विचारधारा से जुड़ा हो।
तो आज हमारा मकसद यही है कि इसे किसी खास पॉलिटिकल चश्मे से ना देखें बल्कि इसकी बनावट को समझें। ये है क्या असल में? बिल्कुल। तो सबसे पहले लेखक से ही मिल लेते हैं।
हाँ
जे एम बर्जर,
हाँ
ये अमेरिका के काफी जाने माने रिसर्चर हैं, एनालिस्ट हैं, और इनका खास काम अतिवाद, आतंकवाद और खासकर आजकल जैसे चरमपंथी समूह इंटरनेट और सोशल मीडिया का इस्तेमाल कैसे करते हैं इसको समझने पर है।
अच्छा, मतलब ये सिर्फ थ्योरी नहीं बल्कि प्रैक्टिकल चीजों पर भी ध्यान देते हैं।
हाँ हाँ बिल्कुल। और इनका काम कोई हवा हवाई नहीं है। काफी अच्छी जगह पर काम किया इन्होंने, जैसे ब्रोकिंग्स इंस्टीट्यूशन है, जॉर्ज वॉशिंगटन यूनिवर्सिटी का प्रोग्राम ऑन एक्सट्रीमिज्म, फिर वो ICCT है, इंटरनेशनल सेंटर फॉर काउंटर टेररिज्म। और इनकी खास बात यह है कि इनका जो तरीका है वो डेटा पर आधारित होता है और ये डिजिटल दुनिया को उसकी नब्ज को खूब पहचानते हैं।
ये दिलचस्प है।
और एक और दिलचस्प बात है, इनकी एक पिछली किताब थी आइसिस पर, वो एक खास समूह पर थी।
हाँ, मैंने सुना है उसके बारे में।
लेकिन उसी स्टडी से, उसी गहरे अध्ययन से उन्होंने एक्सट्रीमिज्म में एक ऐसा सिद्धांत निकाला जो सिर्फ आइसिस पर नहीं बल्कि ज्यादातर अतिवादी विचारधाराओं पर लागू होता है।
अच्छा, मतलब एक पैटर्न खोज लिया उन्होंने।
हाँ कह सकते हैं, यही बर्जर की खासियत है। वो पहचान यानी आइडेंटिटी से जुड़े जो पुराने सिद्धांत हैं उनको आज की टेक्नोलॉजी, आज के सोशल मीडिया के दौर से जोड़कर देखते हैं। वो सिर्फ ये नहीं बताते कि क्या होता है बल्कि ये भी कि ये चीजें फैलती कैसे हैं, खासकर ऑनलाइन दुनिया में। चलिए अब किताब पर आते हैं, एक्सट्रीमिज्म। आपने बताया ये MIT प्रेस की इसेंशियल नॉलेज सीरीज का हिस्सा है,
जी
तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जटिल विषय को आसान बनाने की कोशिश करती है।
बिल्कुल, इस सीरीज का मकसद यही है और बर्जर की किताब ठीक यही करती है। अतिवाद पर जो एक रहस्य का पर्दा है उसे हटाती है और एक साफ काम का ढांचा देती है। और सबसे बड़ी बात, ये किसी राजनीतिक खेमे या विचारधारा का पक्ष नहीं लेती।
ये जरूरी आजकल
बहुत ज्यादा। और किताब का जो सबसे बड़ा आइडिया है वो सच में सोचने पर मजबूर करता है। बर्जर कहते हैं कि अतिवाद को इस बात से मत पहचानिए कि कोई क्या मानता है, मतलब कंटेंट क्या है।
अच्छा, तो फिर कैसे पहचाने?
वो कहते हैं इस बात से पहचानिए कि वो दुनिया को कैसे देखता है, उसकी सोच की बनावट, उसका स्ट्रक्चर कैसा है। उनका निचोड़ ये है कि हर तरह का अतिवाद असल में पहचान की राजनीति का ही एक बिगड़ा हुआ, नुकसान पहुंचाने वाला रूप है।
पहचान की राजनीति का बिगड़ा हुआ रूप, ठीक है।
और यहीं पर वो अपनी वो मशहूर परिभाषा देते हैं जो पूरी किताब की नींव है।
ध्यान से सुनिएगा।
हाँ बताइए।
बर्जर के अनुसार अतिवाद वो यकीन है कि आपके अपने समूह इन ग्रुप की कामयाबी या उसका वजूद बनाए रखना किसी दूसरे खास समूह आउट ग्रुप के खिलाफ दुश्मनी भरी कार्रवाई करने से जुड़ा हुआ है और इन दोनों को अलग नहीं किया जा सकता।
मतलब हम तभी आगे बढ़ेंगे जब उनका नुकसान हो या कम से कम उनके खिलाफ कुछ किया जाए। बिल्कुल। या ये कि हमारी सुरक्षा के लिए उन पर एक्शन जरूरी है, इन दोनों चीजों को वो अविभाज्य मानते हैं।
ये परिभाषा थोड़ी भारी लगती है सुनने में।
हाँ, एकेडमिक लग सकती है लेकिन ये बहुत पावरफुल है। किताब इसी को खोलती है। पहले वो बताते हैं कि अतिवाद को डिफाइन करना इतना मुश्किल क्यों रहा है।
ओके।
फिर वो पहचान, विचारधारा, मनोविज्ञान, समूह की भूमिका, इन सब पहलुओं की परतें खोलते हैं।
और आखिर में?
आखिर में पाठक को दुनिया को देखने का एक नया चश्मा मिलता है।
तो चलिए थोड़ा और खोलते हैं इसको। शुरुआत कहाँ से होती है?
बर्जर शुरू में ही पुरानी परिभाषाओं की कमियों पर बात करते हैं। जैसे कई लोग सोचते हैं अतिवाद मतलब हिंसा या बहुत अजीब अलोकप्रिय विचार, या सिर्फ लेफ्ट विंग या राइट विंग की बात?
हाँ, आमतौर पर यही समझा जाता है।
पर बर्जर कहते हैं ये काफी नहीं है। हिंसा तो नतीजा हो सकता है, विचार अलोकप्रिय हो सकते हैं, पर यह अतिवाद की जड़ नहीं है।
तो फिर उनकी परिभाषा की खूबी क्या है?
खूबी यह है कि वो विचारधारा निरपेक्ष है, आइडियोलॉजी न्यूट्रल। ये परिभाषा आप देखिए खमेर रूच पर भी फिट बैठती है।
कंबोडिया वाले,
हाँ, जिन्होंने अपने इन ग्रुप यानी शुद्ध कंबोडियन की भलाई के लिए आउट ग्रुप यानी शहरी पढ़े लिखे लोग के खिलाफ भयानक हिंसा की, और यही परिभाषा आइसिस पर भी फिट बैठती है।
बिल्कुल, जिनका इन ग्रुप सुन्नी मुसलमानों का एक बहुत छोटा कट्टर हिस्सा है।
बिल्कुल, और आउट ग्रुप लगभग बाकी सारी दुनिया।
और वो जो दुश्मनी भरी कार्रवाई हॉस्टाइल एक्शन की बात है, उसका मतलब सिर्फ हिंसा तो नहीं होगा?
नहीं, बिल्कुल नहीं। उसका मतलब भेदभाव भी हो सकता है, नफरत फैलाना, किसी समूह को अधिकारों से वंचित करना, कुछ भी। हिंसा उसका एक एक्सट्रीम रूप है।
ठीक है, तो ये सोच आती कहां से है, जड़ क्या है इसकी?
बर्जर कहते हैं जड़ है पहचान, आइडेंटिटी। हम इंसान हैं, है ना, हमें किसी ना किसी समूह से जुड़ना अच्छा लगता है, ये हमारी फितरत में है, हम बनाम वो।
हाँ, ये तो है, सोशल आइडेंटिटी थ्योरी भी यही कहती है शायद।
बिल्कुल, अतिवाद इसी फितरत का कह सकते हैं गलत फायदा उठाता है। वो किसी एक पहचान को, चाहे वो धर्म की हो, राष्ट्र की, जाति की या कोई और, उसको सबसे ऊपर रख देता है। इसे बर्जर पहचान प्रमुखता या आइडेंटिटी साइलियंस कहते हैं।
पहचान प्रमुखता,
हाँ। और जब लोग जिंदगी में किसी मुश्किल दौर से गुजर रहे होते हैं, मान लीजिए नौकरी चली गई, समाज में अकेलापन है, कोई बड़ा हादसा हो गया, तब वो ऐसी विचारधाराओं की तरफ आसानी से खिंच सकते हैं जो उन्हें एक मजबूत पहचान दें, एक मकसद दें, एक अपनेपन का एहसास दिलाएं। तो पहचान इंजन की तरह है।
हाँ, कह सकते हैं। और अगर पहचान इंजन है तो विचारधारा उसका ईंधन और नक्शा है।
अच्छा, विचारधारा का क्या रोल है फिर?
बर्जर बताते हैं कि चरमपंथी विचारधारा तीन जरूरी काम करती है। पहला, ये साफ साफ बताती है कि हम कौन हैं और वो कौन है, आउट ग्रुप कौन है।
ठीक है, पहचानना वो आउट ग्रुप है, मतलब शिकायत तैयार करती है।
और तीसरा?
तीसरा, ये उस आउट ग्रुप के खिलाफ जो दुश्मनी भरी कार्रवाई है उसे सही ठहराती है, कहती है कि यही एकमात्र रास्ता है बचने का या जीतने का, एक औचित्य देती है।
मतलब विचारधारा एक कहानी बनाती है जिसमें हम पीड़ित हैं और वो विलन।
बिल्कुल, अक्सर यही होता है, विक्टिम कार्ड खेला जाता है कि हम खतरे में हैं, हम पर जुल्म हो रहा है। आप सोचिए नाजी जर्मनी में यहूदियों को कैसे हर समस्या का जड़ बताया गया।
हाँ।
या कैसे कुछ जिहादी समूह पूरी दुनिया को इस्लाम के खिलाफ साजिश रचते हुए दिखाते हैं। ये कहानी ही नफरत और हिंसा को जायज बना देती है, उसे एक जरूरी काम बना देती है।
ये तो खतरनाक है। अब अगर हम समूह से हटकर व्यक्ति पर आए, कोई इंसान इस रास्ते पर क्यों चल पड़ता है?
जेम्स बर्जर क्या कहते हैं, मोड़ आते हैं जब इंसान का दिमाग नए और कभी कभी खतरनाक विचारों को अपनाने के लिए ज्यादा खुल जाता है। ये शायद कोई पर्सनल ट्रॉमा हो सकता है, समाज से कटा हुआ महसूस करना, आर्थिक तंगी, या बस जिंदगी में किसी गहरे मतलब की तलाश।
एक तरह की कमजोरी का पल।
हाँ, या एक खोज का पल। और ऐसे में चरमपंथी विचारधारा एकदम तैयार मिलती है। वो आसान जवाब देती है, सशक्तिकरण का एहसास कराती है, और सबसे बढ़कर एक भाईचारा, एक समुदाय देती है
जो शायद उसे असल जिंदगी में नहीं मिल रहा होता।
बिल्कुल, ये दुनिया को एकदम काले और सफेद में बांट देती है, हम अच्छे वो बुरे, कोई ग्रे एरिया नहीं। इसे सिग्निफिकेंस क्वेस्ट, महत्व की खोज से भी जोड़ा जाता है, मतलब इंसान कुछ ऐसा करना चाहता है जिससे उसकी जिंदगी को मायने मिले, वो महत्वपूर्ण महसूस करे, भले ही वो रास्ता विनाशकारी हो।
अच्छा, ये तो हुई व्यक्ति की बात, लेकिन ये चीजें समूहों, ग्रुप्स और नेटवर्क्स में कैसे पनपती हैं? अकेले तो नहीं होता ये सब।
सही कहा, यहाँ सामाजिक माहौल, सोशल डायनामिक्स का बड़ा रोल है। समूह में क्या होता है, एक दूसरे की बातों को सुनकर यकीन और पक्का होता जाता है।
इको चैम्बर जैसा?
हाँ बिल्कुल, इको चैम्बर बन जाता है। करिश्माई नेता लोगों को अपनी तरफ खींचते हैं, सामाजिक प्रमाण, सोशल प्रूफ काम करता है, अगर सब मान रहे हैं तो सही ही होगा। और अक्सर समूह अपने सदस्यों को बाहरी दुनिया की जानकारी से काट देता है ताकि बाहर के विचार अंदर ना आए। और ये समूह सिर्फ विचार नहीं देते, वो एक पहचान देते हैं, एक मकसद देते हैं, एक हम सब साथ हैं, एक साझा भाग्य वाली शक्तिशाली भावना देते हैं।
भर्ती कैसी होती है इन समूहों में?
भर्ती का तरीका भी दिलचस्प है। बर्जर कहते हैं कि अक्सर लोग अजनबियों के बजाय अपने जान पहचान वालों, दोस्तों रिश्तेदारों की बातों से ज्यादा प्रभावित होते हैं।
अच्छा, मतलब पर्सनल कनेक्शन ज्यादा मायने रखता है।
हाँ, रिश्ते नाते आग को फैलाने में मदद करते हैं।
और फिर आता है सबसे मुश्किल सवाल, अतिवाद और हिंसा का रिश्ता। क्या हर अतिवादी हिंसक होता है?
नहीं, यहीं पर बर्जर एक बहुत जरूरी फर्क बताते हैं। वो कहते हैं कि अतिवाद आतंकवाद या राजनीतिक हिंसा का अनुज्ञापक कारण है।
Permissive cause. ये थोड़ा समझाइए।
मतलब अतिवाद वो सोच है, वो माहौल है जो हिंसा को होने की इजाजत देता है, उसे मुमकिन बनाता है, वो जमीन तैयार करता है।
अच्छा,
ये समझना बहुत जरूरी है। हर अतिवादी हिंसक नहीं होता। बहुत से लोग कट्टर विचार रख सकते हैं पर शायद कभी हिंसा न करें। लेकिन जब भी विचारधारा के नाम पर हिंसा होती है तो उसके पीछे लगभग हमेशा कोई न कोई अतिवादी सोच ही होती है। वो सोच ही हिंसा को सही ठहराती है।
कैसे सही ठहराते हैं हिंसा को?
तरीके वही हैं, दुश्मन को इंसान समझना बंद कर देना, उन्हें अमानवीय बना देना, डीह्यूमनाइजेशन, या ये कहना कि हम तो बस अपनी रक्षा कर रहे हैं, सेल्फ डिफेंस में कर रहे हैं। बर्जर यहाँ स्टोकेस्टिक टेररिज्म का जिक्र भी करते हैं शायद।
स्टोकेस्टिक टेररिज्म, ये क्या होता है?
इसका मतलब है जहाँ कोई नेता सीधे हिंसा का आदेश नहीं देता पर उसके भाषण इतने भड़काऊ होते हैं कि वो किसी और को जो शायद थोड़ा अस्थिर है हिंसा करने के लिए उकसा सकते हैं। जिम्मेदारी सीधी नहीं होती पर असर होता है।
बापरे, ये तो बहुत सूक्ष्म है। और आज के जमाने में डिजिटल दुनिया, डिजिटल एज ने इसमें क्या जोड़ा है?
अरे, इसने तो पूरा खेल ही बदल दिया है। इंटरनेट और सोशल मीडिया ने एक नया तूफान ला दिया है।
कैसे?
देखिए, पहले आंदोलन चलाने के लिए कोई एक बड़ा नेता चाहिए होता था, संगठन चाहिए होता था। अब छोटे छोटे समूह कहीं से भी ऑपरेट कर सकते हैं। आंदोलन विकेंद्रीकृत हो गए हैं।
और शायद कट्टर बनने की प्रक्रिया भी तेज हो गई है।
बहुत तेज। रेडिकलाइजेशन की स्पीड बढ़ गई है। दुनिया भर में फैले लोग ऑनलाइन समुदायों में मिनटों में जुड़ जाते हैं, अपनी बातें शेयर करते हैं, एक दूसरे को भड़काते हैं।
और वो एल्गोरिथम वाली बात?
हाँ, वो भी एक बड़ा फैक्टर है। आप एक चीज देखते हैं और एल्गोरिथम आपको उसी तरह की और ज्यादा एक्सट्रीम चीजें दिखाने लगता है। इसे रैबिट होल कहते हैं हम। आप एक खरगोश के बिल में गिरते जाते हैं और बाहर निकलना मुश्किल हो जाता है। बर्जर एक और मजेदार शब्द इस्तेमाल करते हैं, सलाद बार अतिवाद।
सलाद बार अतिवाद, ये क्या है?
हल्की ऐसी, मतलब जैसे आप सैलेड बार में अपनी पसंद की चीजें चुनकर अपनी प्लेट बनाते हैं, वैसे ही कुछ लोग अलग अलग अतिवादी विचारधाराओं से अपनी पसंद के तत्व उठाकर अपनी एक खिचड़ी बना लेते हैं।
अरे वाह, ये तो बिल्कुल नई बात है।
हाँ, ऑनलाइन फोरम्स, चैट ग्रुप्स, ये सब नए अड्डे बन गए हैं जहाँ ये सब चलता है।
तो अगर ये समस्या इतनी जटिल है, इतनी फैली हुई है, तो इसका हल काउंटर एक्सट्रीमिज्म क्या है? बर्जर कुछ समाधान बताते हैं?
हाँ, बताते हैं। वो समाधानों के पूरे स्पेक्ट्रम की बात करते हैं। कुछ तरीके सख्त हैं, जैसे पुलिस एक्शन, कानून का इस्तेमाल, मिलिट्री एक्शन।
और कुछ नरम तरीके भी होंगे?
बिल्कुल। सॉफ्ट अप्रोच में शिक्षा आती है, मीडिया लिटरेसी आती है, मतलब लोगों को सिखाना कि मीडिया पर जो आ रहा है उसे कैसे समझें, कैसे परखें, समुदाय के साथ मिलकर काम करना, सामुदायिक जुड़ाव,
कम्युनिटी एंगेजमेंट।
और जो लोग इस रास्ते पर चल पड़े हैं उनके लिए कुछ?
हाँ, उनके लिए ऑफ रैंपिंग प्रोग्राम्स होते हैं जो उन्हें इस रास्ते से वापस लाने में मदद करें।
लेकिन ये डिजिटल युग में तो और मुश्किल हो गया होगा ना, है ना? सेंसरशिप करें तो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का सवाल उठता है। बहुत मुश्किल। कहाँ तक बोलने की आजादी है और कहाँ से नफरत फैलाने वाला भाषण शुरू होता है, इसकी रेखा खींचना बहुत कठिन है। ऑनलाइन झूठ और अफवाहों, डिसइंफॉर्मेशन से कैसे निपटें, ये बड़ी चुनौतियां हैं।
तो कोई आसान जवाब नहीं है?
बिल्कुल नहीं। बर्जर जोर देते हैं कि कोई एक जादुई छड़ी नहीं है। हमें एक साथ कई स्तरों पर काम करना होगा, व्यक्ति पर भी, समाज पर भी, और उन हालातों पर भी जो लोगों को इस तरफ धकेलते हैं। एक व्यापक दृष्टिकोण चाहिए।
वाकई काफी कुछ है इसमें सोचने को। अगर हम इस पूरी बातचीत का सार निकालें तो मुख्य बातें या बड़े संदेश क्या होंगे? मेरे लिए तो शायद सबसे बड़ी बात यही है कि अतिवाद की बनावट एक जैसी होती है, चाहे उसका चोला कोई भी हो।
सही कहा।
वो जो बर्जर की इन ग्रुप आउट ग्रुप वाली परिभाषा है, वो हमें किसी भी तरह के अतिवाद को, चाहे वो धार्मिक हो, राजनीतिक या कुछ और, बिना किसी तरफ झुके समझने का एक टूल देती है।
मैं सहमत हूँ। और मेरे लिए दूसरी बड़ी बात है पहचान का रोल। अतिवाद असल में पहचान का खेल है। ये हमारी किसी समूह से जुड़ने की जो गहरी मानवीय जरूरत है उसका फायदा उठाता है।
हाँ।
विचारधारा तो बस बाद में आती है उस बंटवारे को सही ठहराने के लिए। बर्जर की वो बात याद है, अतिवाद विचारों से शुरू नहीं होता, यह पहचान से शुरू होता है। विचारधारा को हम और वे के बीच विभाजन को सही ठहराने के लिए बाद में फिट किया जाता है।
हाँ, ये बहुत महत्वपूर्ण है। इसका मतलब है कि अगर हमें इसका मुकाबला करना है तो सिर्फ विचारों को गलत साबित करना काफी नहीं है।
बिल्कुल, हमें लोगों की पहचान से जुड़ी जरूरतों और असुरक्षाओं को भी समझना होगा।
तीसरा संदेश क्या होगा?
तीसरा, विचारधारा का काम ये नफरत और हिंसा को जायज ठहराए वाली कहानी गढ़ती है। ये एक पावरफुल टूल है जो पूर्वाग्रह को तर्कसंगत और हिंसा को जरूरी बना देता है। ये नफरत को एक ऊंचे मकसद का लिबास पहना देती है।
और चौथा?
चौथा और बहुत जरूरी, सोच और काम के बीच का फर्क। अतिवाद एक सोच है, आतंकवाद एक तरीका, एक स्ट्रैटेजी है।
हाँ, ये फर्क जरूरी है।
बर्गर साफ कहते हैं, आतंकवाद एक रणनीति है, अतिवाद वो विश्वास प्रणाली है जो इसकी अनुमति देती है। आप आतंकवादी हुए बिना चरमपंथी हो सकते हैं, लेकिन आप पहले चरमपंथी हुए बिना वैचारिक रूप से प्रेरित आतंकवादी नहीं हो सकते। ये फर्क समझना कानून और पॉलिसी बनाने वालों के लिए बहुत अहम है,
ताकि वो सही चीज पर फोकस कर सकें। और पांचवा संदेश, वो डिजिटल वाला।
हाँ, पांचवा, डिजिटल युग ने इस खेल को बदल दिया है। बर्गर का वो कथन बहुत सटीक है, इंटरनेट अतिवाद का कारण नहीं है, लेकिन ये इसके लिए अब तक का सबसे शक्तिशाली त्वरक है।
मतलब आग पहले से थी, इंटरनेट ने उस पर पेट्रोल डाल दिया।
हाँ, कुछ वैसा ही। नफरत और बंटवारे की सोच तो शायद हमेशा से थी, लेकिन इंटरनेट ने इसे फैलने की जो रफ्तार और पहुंच दी है वो पहले कभी नहीं थी। हम अपने देश में भी देखते हैं ना, कैसे सोशल मीडिया पर ध्रुवीकरण और नफरत वाली बातें तेजी से फैलती हैं।
हाँ, ये तो रोज का अनुभव है।
ये इसी का उदाहरण है।
तो अब सबसे जरूरी सवाल, हम अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में इस समझ का क्या करें, क्या कर सकते हैं हम लोग?
देखिए, पहली चीज तो ये कि हम चरमपंथी बातों को पहचानना सीख सकते हैं, थोड़ा अलर्ट हो सकते हैं।
कैसे? किन चीजों पर ध्यान दें?
जब कोई नेता या कोई सोशल मीडिया पोस्ट या आप कोई व्हाट्सएप फॉरवर्ड लगातार हम बनाम वो की बात करें, दूसरे समूह को खतरे की तरह दिखाए और कहे कि उनके खिलाफ कुछ करना जरूरी है, तो हमारे दिमाग में घंटी बजनी चाहिए।
बर्जर की परिभाषा याद रखें, अतिवाद वह विश्वास है कि किसी इन ग्रुप की सफलता या अस्तित्व एक विशिष्ट आउट ग्रुप के खिलाफ शत्रुतापूर्ण कार्यवाही से अविभाज्य है। इस पैटर्न को पहचानना पहला कदम है।
बिल्कुल। दूसरा, हम ध्रुवीकरण का विरोध कर सकते हैं। जब भी लगे कि दुनिया को सिर्फ काले और सफेद में बांटा जा रहा है, तो थोड़ा रुकें, सोचें, क्या सच में चीजें इतनी सिंपल हैं? क्या दूसरे पक्ष की बात में जरा भी दम नहीं हो सकता? थोड़ी सहानुभूति, थोड़ा खुले दिमाग से सोचने की कोशिश करनी चाहिए।
और बातचीत में कैसे मदद मिल सकती है इससे?
हाँ, ये तीसरा पॉइंट है। ये समझ हमें बेहतर बातचीत करने में मदद कर सकती है। कई बार हम बहस में सिर्फ फैक्ट्स पर लड़ते रहते हैं ना, जबकि असल मुद्दा शायद सामने वाले की पहचान से जुड़ी किसी असुरक्षा या शिकायत का होता है।
जड़ तक पहुंचने की कोशिश करें।
हाँ, उसे समझने की कोशिश करें, तो शायद बहस की जगह बातचीत हो पाए।
और बड़े स्तर पर, समाज के लेवल पर?
बड़े लेवल पर सोचें तो मीडिया लिटरेसी बहुत जरूरी है। बच्चों को, बड़ों को, सबको ये सिखाना कि खबरों और सोशल मीडिया पर जो दिख रहा है उसे आंख बंद करके सच ना माने। थोड़ा सोचें कि कौन कह रहा है, क्यों कह रहा है, कहीं इसमें हम बनाम वो वाला खेल तो नहीं चल रहा।
हाँ, क्रिटिकल थिंकिंग जरूरी है।
और समुदायों को मजबूत बनाना, ऐसी जगह बनाना जहां लोग अलग अलग बैकग्राउंड के होने के बावजूद मिलें, जुलें, एक दूसरे को समझें, क्योंकि अकेलापन और समाज से कटाव लोगों को गलत रास्तों पर धकेलता है।
हम अपने आस पड़ोस में, अपने ऑनलाइन स्पेस में देख सकते हैं कि कहां बंटवारे की दीवारें खड़ी हो रही हैं और उन्हें कैसे गिराया जा सकता है।
बिल्कुल।
मेरे लिए इस पूरी चर्चा से जो सबसे चौंकाने वाली बात रही वो शायद यही है कि कैसे एकदम अलग दिखने वाले समूह, चाहे वो दुनिया के किसी भी कोने में हो, किसी भी भगवान को मानते हों या किसी भी झंडे को उठाते हों, अंदर से एक ही तरह के मनोवैज्ञानिक और सामाजिक पैटर्न पर चल रहे होते हैं। ये संरचनात्मक समानता वाकई आंखें खोल देती है।
हाँ, ये वाकई में है। और मेरे लिए पहचान की भूमिका कितनी केंद्रीय है ये समझना सबसे अहम रहा, कि ये लड़ाई अक्सर विचारों से ज्यादा पहचान की होती है। और दूसरा, डिजिटल दुनिया ने कैसे इस पुरानी समस्या को एक बिल्कुल नया, ज्यादा खतरनाक रूप दे दिया है। ये डराता भी है, लेकिन जैसा आपने कहा, बर्जर समाधानों की बात भी करते हैं जो थोड़ी उम्मीद जगाता है।
तो हम अपने श्रोताओं के लिए एक सवाल छोड़ जाते हैं। बर्जर का ये फ्रेमवर्क, अतिवाद को उसकी बनावट से समझने का तरीका, क्या ये हमें अपने आसपास दिखने वाले गहरे मतभेदों, ऑनलाइन की घड़वाहट भरी बहसों को एक नए नजरिए से देखने में मदद कर सकता है?
क्या ये हमें सिर्फ गुस्सा करने या विरोध करने के बजाय इन मुश्किल हालातों को थोड़ा बेहतर समझने में मदद कर सकता है?
सोचिएगा जरूर। मिलेंगे अगले अंक में एक और विश्व प्रसिद्ध व्यक्तित्व, एक और किताब और एक ऐसे नए विचार के साथ जो हमारी दुनिया को आकार देता है। यह ऑडियो सारांश आपके लिए एकत्रित फाउंडेशन द्वारा प्रस्तुत है।